प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मलाकी नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है रूढ़िवाद को फटकार। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रविष्य के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको फिर से बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी से अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा से इसराइलियों के जीवन की उन बातों को हमारे सामने रख रहा है। तो आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों के पास आकर आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठकर एक साथ कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सुनते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को आप खोल दें, ताकि आपका वचन हमसे बोलने और बातचीत करने पाए, हमें समझाने और सिखाने पाए। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपने वचन के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा है कि हम इन दिनों बाइबल में से मलाकी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मलाकी की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर अपने दो दूतों को भेजेगा, जिनमें से एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और दूसरा प्रभु यीशु मसीह है, जिसे हमने पिछले अध्ययन में देखा था। यूहन्ना तो आ गया और प्रभु यीशु मसीह भी आ गया, परंतु इस समय वह अनुग्रह लाने वाला मुक्तिदाता था। इससे भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को अपना राज्य स्थापित करके विद्रोह का दमन करना है, अतः यह भविष्यवाणी उसके दूसरे आगमन से संबंधित है। अब मैं आपके सामने कुछ सुसमाचार संदर्भ देना चाहता हूं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आगमन से संबंधित है। पहला, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। दूसरा, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 2 पद में लिखा है, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। तीसरा, लुका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। और चौथा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 23 पद में है, उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यह यशाया की भविष्यवाणी के संदर्भ में है, परंतु हम देखते हैं कि मलाकी भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता या देने वाले के लिए भविष्यवाणी करता है। अतः यह इसराइल की प्रजा के लिए परमेश्वर का उत्तर है। पहले परमेश्वर प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में भेजेगा, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है और वह मनुष्य का पापों से उद्धार करना चाहेगा। परंतु यही अंत नहीं है, वह दूसरी बार फिर आएगा जब वह वाचा का दूत होगा और इस पृथ्वी पर न्याय और दंड लाएगा। मेरे मित्रों, अब यदि आप मुझे विश्वास दिला दें कि परमेश्वर पाप का दंड नहीं देना चाहता और वह पापियों को अन्याय करके जाने देगा, तो मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि मैं उससे फिर जाऊंगा। परंतु उसने स्पष्ट कह दिया है कि वह मनुष्य का न्याय करेगा। जी हां, यदि आप उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह आपका न्यायकर्ता होगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 22 पद में उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के वृतांत में हम उसे श्वेत सिंहासन पर बैठा देखते हैं और सब भटके हुए, धनवान और कंगाल, बड़े और छोटे, ऊंचे और नीचे, सब उसके सामने खड़े होंगे, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो। मेरे मित्रों, आप पाप करके बच नहीं पाएंगे। वह कहता है वाचा का वह दूत। वह किस वाचा के बारे में कह रहा है? बहुत से विचारकों का कहना है कि यह नई वाचा अर्थात नया नियम है, परंतु सच तो यह है कि यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु के प्रथम आगमन की नहीं है। यह वाचा वह वाचा है जो परमेश्वर ने इसराइल के साथ बांधी है, जिसका उल्लेख धर्मशास्त्र में अनेक स्थानों पर किया गया है। उदाहरण स्वरूप लय व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय उसके 9 से 13 पद में लिखा है, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते हुए भी पुराने को निकालोगे और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाऊंगा और मेरा जी तुझसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास बने न रहो और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा करके चलाया है। मेरे मित्रों, इसराइल के साथ बांधी गई परमेश्वर की वाचा यही है। इसी वाचा की पुष्टि आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक में देखेंगे, क्योंकि व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा की व्यवस्था और उसके साथ 40 वर्ष बाद तक के इसराइल के अनुभवों को पुष्टिकरण किया गया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है किसी और वस्तु को मूर्ति खोदकर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। परंतु इसराइल ने ठीक वही किया जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। उन्होंने यहां तक कि भूत सिद्धि भी की। अतः मलाकी कहता है कि वाचा का दूत एक दिन आएगा और इस वाचा को सिद्ध करेगा, परमेश्वर उनके मध्य वास करेगा। और यही कारण है कि मलाकी अध्याय 3 के इस पद में हम भावी पाप मुक्ति और पवित्र किए जाने की चर्चा पढ़ते हैं। परमेश्वर उनके मध्य तभी वास करेगा या कर सकता है जब वे उसकी ओर फिरेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तथा वह उन्हें पाप मुक्ति प्रदान करके उन्हें शुद्ध करेगा। यह आज किसी भी मसीही सेवा के विषय में भी सच ही है। लिखा है, प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, यह देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अति शीघ्र आने वाला है, परंतु यह कि वह अकस्मात ही अपने मंदिर में उपस्थित हो जाएगा। मुझे कभी किसी ने कहा, आप पृथ्वी से कलीसिया के उठाए जाने की बात करते हैं, जब मैं देखूंगा कि विश्वासी उठाए जा रहे हैं मैं उसी पल प्रभु यीशु को ग्रहण कर लूंगा। मैंने उससे कहा, तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जब वह कलीसिया को लेने आएगा तब कलीसिया पूर्ण हो चुकी होगी और उस समय आप कलीसिया का अंग बनने योग्य न रहेंगे। आप प्रभु यीशु को ग्रहण करके महाक्लेश में होंगे, परंतु तब तक प्रतीक्षा करना आपकी मूर्खता होगी। मेरे प्रियो, वह प्रभु कहलाता है और यह मंदिर उसका ही है। वह वाचा का दूत है, अतः हम समझ सकते हैं कि यह दूत प्रभु यीशु मसीह है, जिसे हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। वही पुराने नियम में वाचा का दूत है। आइए हम मलाकी नबी की पुस्तक 3:2 को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। मेरे प्रियो, मलाकी प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की चर्चा कर रहा है, क्योंकि वह दंड के विषय कह रहा है। यहां अभिव्यक्ति पर ध्यान दे, उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा। यह प्रभु यीशु का दूसरा आगमन है। लिखा है, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग के समान है। धातु को साफ करने के लिए उसे बहुत ही तेज आग में पिघलाया जाता है कि उसका मैल अलग हो जाए और धातु पूरी तरह शुद्ध हो जाए। तब आगे लिखा है, धोबी के साबुन के समान है। वह हमें शुद्ध करना चाहता है, हमें साफ करना चाहता है। जब वह इस पृथ्वी पर अपना 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेगा तब किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। मलाकी 3:3 में आगे लिखा है, वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। यहां पर लिखा है, वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा। जी हाँ, वह उसके 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करने वालों को शुद्ध करेगा। आगे कहता है, और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। दो काम किए जाएंगे, शुद्ध करना और निर्मल बनाना। शुद्ध करना साबुन के द्वारा होता है, जैसा यहां पर कहा गया है, और आग पर रखने के लिए उपयोग की जाती है। यह परमेश्वर की एक और विधि है जिसके द्वारा वह हमें निर्मल बनाता है और हमारी परख करता है। मलाकी की पुस्तक 3:4 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। लिखा है, तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी। परमेश्वर उनके बलिदानों से प्रसन्न होगा, क्योंकि वे शुद्ध और निर्मल जन होंगे। परमेश्वर आपके धार्मिक संस्कारों से तब तक प्रसन्न नहीं होता है जब तक कि आपका मन शुद्ध ना हो, जब तक आप पापों से फिरकर उनकी ओर ना फिरें। आप पाप में तो गिर सकते हैं, परंतु यदि आप पापों में ही पड़े रहें तो परमेश्वर आपके धर्म को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आगे वह कहता है, जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भावी थी। सुलेमान के युग में इसराइल अपनी आराधना के कारण संपूर्ण संसार में परमेश्वर की गवाही था। मलाकी 3:5 में आगे हम पढ़ते हैं, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनहों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों का अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे मित्रों, लिखा है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनहों के विरुद्ध तुरंत साक्षी दूंगा। अंतर जातीय विवाह अर्थात पड़ोस की अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करने के कारण उनमें मूर्ति पूजा, जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा शैतान की उपासना प्रवेश कर गई थी। आज इस आत्मिक रिक्त स्थान के कारण विश्वासी भी पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। यह हम प्रचारकों का उत्तरदायित्व है कि विश्वासियों में आत्मिकता भर दें। कहता है, और व्यभिचारियों अर्थात वे इसराइली जिन्होंने अपनी पत्नियों को तलाक देकर अन्य स्त्रियों से विवाह कर लिया था। आगे है, झूठी क्रिया खाने वालों अर्थात झूठ बोलने वालों और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, इन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे परदेशियों में परमेश्वर के गवाह नहीं थे। उनके अनुचित व्यवहार के कारण परदेशी परमेश्वर से दूर हो जाते थे। मलाकी 3 उसके 6 पद में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर दंड देता है, परंतु वह अनुग्रह भी दर्शाता है। वे अन्य राष्ट्रों के समान विलोप नहीं हुए। इसका एकमात्र कारण था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वह आज भी अनुग्रहकारी है, क्योंकि वह कभी नहीं बदलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज भी दंड देता है। वह दुष्ट के लिए भय का कारण है, परंतु जहां तक उसके अनुग्रह की बात है वह कभी नहीं बदलता है। यह उन सब के लिए शांतिदायक वचन है जो उसके अनुग्रह को ग्रहण करते हैं। अब हम उनके 6वें तीखे उत्तर को देखेंगे जो वे परमेश्वर को देते हैं। 8 में से 5 हम देख चुके हैं और यह 6ठा है। परमेश्वर उनसे जो भी शिकायत करता था वे परमेश्वर से कहते थे कि वह उसे सिद्ध करे, प्रमाणित करे। परमेश्वर ने उन पर 8 दोष लगाए और उन्होंने पलट कर परमेश्वर से 8ों बार प्रासंगिक एवं अभिमानी प्रश्न पूछे। परमेश्वर विनम्रता पूर्वक परंतु कठोरता से बल देकर कहता है, परमेश्वर का प्रयास है कि वे विनाश के मार्ग से हट जाएं। मेरे मित्रों, इन प्रश्नों पर विचार व्यक्त करने से पूर्व उचित होगा कि हम प्रश्न करने वाली उस पीढ़ी पर ध्यान दें। 70 वर्ष की बंधुआई के बाद, गुलामी के बाद, कुछ इसराइली स्वदेश अर्थात अपने देश में लौटे थे और संकोच एवं निरुत्साह के साथ वे शहर पनाह और मंदिर का पुनः निर्माण कर रहे थे। उन्होंने बंधुआई का परिश्रम और कष्ट देखे थे, जैसे उनके पूर्वजों ने मिस्र में ईंटें बनाते समय देखे थे। वे निश्चय ही कष्टों के कारण कराहते होंगे और अब स्वदेश आने के बाद भी वे कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। यहां भी घोर पीड़ा और निराशा थी। वे तो यह सोचकर आए थे कि अपने देश में उन्हें सब कुछ आसान और अच्छा ही मिलेगा और वे आनंद मनाएंगे, परंतु ऐसा नहीं था। यह परमेश्वर का अनुशासन प्रशिक्षण था, यह सुधार प्रक्रिया थी, परंतु आशा के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। अनुशासन था तो आपको कोमल बनाएगा या अनुशासन आपको कठोर करेगा। ये लोग कठोर हो गए थे और परिश्रम के कारण उनके मन कड़वे हो गए थे। उनकी दशा उस कैदी के समान थी जो मुक्त तो कर दिया गया था, परंतु उसका जीवन बदला नहीं था। बंधुआई से निकल आने के बाद भी उन्होंने सबक नहीं सीखा था। मेरे प्रियो, सच तो यह है कि परमेश्वर अब कुछ नहीं कर सकता था। सुधार का हर एक उपाय परमेश्वर ने काम में ले लिया था। इस पीढ़ी से विषात, फरीसी, सदुकी और शास्त्री उत्पन्न हुए थे, जो प्रभु यीशु के युग में अर्थात 400 वर्षों के बाद पल्लवित हो रहे थे। मलाकी के युग में यह विद्रोह का एक दाना था जो प्रभु यीशु के समय कैंसर बन गया था। परमेश्वर इस बुराई को जड़ से ही समाप्त कर देना चाहता था, अतः उसने उन पर ये 8 दोष लगाए। उनकी प्रतिक्रिया से उनका स्वभाव प्रकट होता है। उन्होंने एक भी दोष स्वीकार नहीं किया और उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि परमेश्वर ने उन पर संदेह किया। उन्होंने अपनी निर्दोषिता व्यक्त की और अपनी भावनाओं को आहत होने का स्वांग रचा। उन्होंने अपने आप को निर्दोष कहकर हाथ हिलाकर परमेश्वर के दोषारोपण को निरर्थक बताया और अपने आप को परमेश्वर के दोषारोपण के कारण दुखी दिखाया। मेरे मित्रों, यह सिर्फ उन इसराइलियों की ही बात नहीं है, परंतु आज हम भी ऐसा ही करते हैं। हम अपने जीवन के उस पाप से हटना नहीं चाहते, परंतु हम परमेश्वर की ओर उंगली उठाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या हम इस लायक हैं कि अपने सृष्टिकर्ता पर उंगली उठाएं? परंतु यहां पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन पर ध्यान दें, अपने जीवन की ओर झांक करके देखें कि हम कहां पर हैं। आज के संदेश को सुन करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह कार्य सिर्फ इसराइलियों ने किया है, लेकिन आप अपने जीवन पर भी विचार करें। क्या आज हम परमेश्वर को दुख नहीं देते? क्या हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते? परमेश्वर ने तो उन पर सिर्फ 8 दोष लगाए थे। यदि वह आज हम पर दोष लगाए तो कितने दोष होंगे, क्या आप गिन सकते हैं? फिर भी परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आज समय है कि हम अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आएं, क्योंकि वह हमें चाहता है, वह हमसे प्रेम करता है, हमें सबक सिखाना चाहता है, ताकि हम अपनी बुराइयों को छोड़ करके परमेश्वर के मार्ग में लौट आएं। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लेंगे और परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जनन